शांति सागर जी महाराज ने इंग्नि मरण प्रकार से
वास्तव में
ये
इन दिनों में
क्षत्रिय
सोलह कारण भावनाओं पर विचार करना चाहिए।
भीतर जो है उसी तरह की,
क्योंकि सोलह कारण पर
अब इन तीनों को अपन समझ लें
और इन दिनों हम
अलग अलग
मना रहे हैं,
देखे हैं,
वह पर्व भी हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही आया है।
जो बारह वर्ष की होती है संलेखना,
बुरी और भली दोनों तरह की भावनाएं होती
हैं, कि थोड़ा सा इसके बाद
और जैन दर्शन तो भावना प्रधान ही माना
है। कर लखन नाम का ग्रंथ है जैनाचार्यों का लिखा हुआ है, जिसमें
पांच महाव्रतों
समुच्चय नाम का ग्रंथ है। इन दोनों
को स्थिर रखने के लिए
कोई अध्ययन,
हर एक महाव्रत की पांच पांच भावनाएं कही गई
कि कितने समय
संसार से विरक्त होने के लिए
दक्षिण आ जाने पर
बारह भावनाएं,
अगर सेवन टू ईयर्स है
वैराग भावनाओं का चिंतन
आप आराम से बारह वर्ष की भी मैक्सिमम बारह वर्ष की संलेखन बारह
लेकिन
भीतर भीतर मैं अपने
इन सब के अलावा
और अपनी देह को
तीर्थंकर बनने के लिए भी
वैदिक संस्कृति में इच्छा
अपने आत्मकल्याण के साथ साथ
हमारे यहाँ पर
लोक कल्याण करने की भावना भी दिखाई जाती है। यह बात
का भी उदाहरण है,
आचार्य भगवंतों ने विशेष रूप से
दोनों
सोलह कारण भावना के रूप में कही है।
धारण अपने सामने कुछ मेरे देखे हुए,
ये सोलह भावनाएं हैं जो कारण बनती हैं तीर्थंकर प्रकृति के संचित
शब्द हैं, पर ज्यादा कठिन नहीं है। भक्त प्रत्याख्यान जिस संलेखना में
सारी कर्म प्रकृति में
आहार को कम किया जाता है,
एक कर्म प्रकृति
पूर्ण आहार को छोड़कर
नाम कर्म की तिरानवे प्रकृतियों में एक तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति ऐसी है
में भी, इग्निमरण में भी
जिसका संचय करना
प्रक्रिया यही
आसान नहीं है।
पहले स्थूल आहार को
कर्मों के बंध की प्रक्रिया को
सूक्ष्म में भी
अपने भगवंतों ने संसार का कारण माना है,
और फिर अंत में
लेकिन मजा यह है
पानी को छोड़कर
एक महातीर्थंकर नाम कर्म है
सभी में सर लेखना,
जिसके बंध को
चाहे वो
संसार का कारण नहीं माने
अपने
बल्कि आत्म कल्याण के साथ साथ
और
लोक कल्याण का कारण
उसकी यही प्रक्रिया। मुझे एक
तीर्थों पर नाम कर्म के संचय के लिए
उदाहरण आ रहा है, मैं सबको रोके हुए हैं अभी।
सामान्य व्यक्ति
फिर उसके बाद बताऊंगा एक
बस की बात नहीं है,
एकदम ऐसे कहा तो 13 दिन वाले,
लेकिन अपने आत्मा की अनंत योग्यता को कोई जागृत करे
प्रकार की संलेखनाएं
तो वो इस ब्रह्मचारी तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त कर सके।
वो तो 95 साल के
केवली शुद्ध केवली के पादमूल में बैठ कर
समय आचार्य जी ने पूछा
सम्यक दर्शन के साथ
एक क्षण के बाद जिनके प्राण निकलने
वाले 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से भाई जाती हैं।
दूसरी बार बोलो
तब जाकर के
वहां पर
तीर्थंकर प्रकृति बंधती है या उसका संचय होता है।
ऐसे भी उदाहरण है हमारे सामने देखे
हम देखें
पर आश्चर्य होता है भावना हमेशा
कि वे 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी हैं।
अपन सबको ये सुन
तो सूत्र जी के एक सूत्र में
मरना तो है ही
दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता सील गति स्मृति चारों वीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति साधु समाधि वैयावृत्तकरण महदाचार्य बहुशत प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल तुमिति तीर्थकर
तरह से संपन्न किया जाता है। एक जिसमें
ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर
दूसरे से भी
नाम कर्म के
अपने हाथ से
अर्जित करने में या संचित करने में कारण
बनती
है, जिनमें सबसे प्रथम भावना है दर्शन भी कहती
प्रत्याख्यान प्रकार की संलेखना।
दर्शन विशुद्धि
होता है
और सम्यक दर्शन में अंतर क्या है?
क्रम क्रम से आहार तो छोड़ेंगे पर
चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि को
मदद नहीं लेंगे।
16 कारण भावनाएं केवली शुद्ध केवली के पादमूल में भाने पर
जिसमें दूसरे की
प्रारंभ हो सकती है तीर्थंकर प्रकृति बंधना
और
जिसका बंध चलता है 8वें गुण स्थान के प्रथम समय तक।
जैसी स्थिति में
चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होकर 8वें गुण स्थान के प्रथम समय
पड़े रहते हैं।
बात अपन को समझने की यह है कि ये भावनाएं सम्यक दृष्टि के द्वारा भाई जाए तभी तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी
न कुछ करेंगे।
जब जिसकी दृष्टि पहले निर्मल हो गई
शांत भाव से
तब और दर्शन विशुद्धि की क्या आवश्यकता है?
ये प्रायोग गमन
ये विचार मन में सहसा आता
कोई एक्शन नहीं और दूसरी
दृष्टि की निर्मलता हासिल करने वाले सम्यक दृष्टि को ही
अपन तो
तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी और वह भी 16 कारण भावनाओं भाने पर बंधेगी। लेकिन ध्यान रखना
सभी
सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में अंतर इतना ही है कि सम्यक दर्शन भी निर्दोष होना चाहिए और इतना ही नहीं
वाले को ही हो सकता है
विषय चिंतन ना होकर के सिर्फ तत्व चिंतन जिसमें हो वो दर्शन विशुद्धि भाव
से बदल सके तो बदल।
सम्यक दृष्टि तो
बैठ सोल हो जाते हैं
जब सामायिक इत्यादि करेगा तब आत्मचिंतन करेगा, बाकी समय पंचेंद्रियों के विषयों का चिंतन भी कर सकता है लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना भाने वाला अपने पंचेंद्रिय के विषयों का चिंतन क्षण भर को भी नहीं करेगा सिर्फ आत्मचिंतन। और वह आत्मचिंतन भी कैसा, वह आत्मदृष्टि भी कैसी जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना छुपी
रहा
तो ही प्राणी मात्र के कल्याण की भावना वाली आत्मदृष्टि जिसको प्राप्त हो गई है वो जाकर के तीर्थंकर प्रकृति
वो जब
नाम कर्म का संचय कर सकता है
उसकी श्रद्धा
हर सम्यक दृष्टि के बस की बात नहीं।
से एक
चाहे तो एक सदगृहस्थ भी ऐसा कर सकता है और कहो तो मुनि महाराज बनकर के भी ऐसा न कर पाए।
सेंटर पॉइंट माइंड में भी वो चला गया
हाँ
और नीचे जाकर से 1600 फीट नीचे
चौथे गुण स्थान वाला हो सकता है
कर रहा था उसने में
हालांकि चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के
ब्लास्टिंग की जाती है
प्रथम समय तक तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है साधक को भी और मुनि महाराज भी जो 2 और 3 कल्याणक वाले
ये थी कि सेफ्टी
अरहंत भगवान होते हैं तीर्थंकर होते हैं विदेश क्षेत्र में
उसमें ऊपर चढ़ के अगर आप चले
ये 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर तो यही होंगे जिन्होंने मुनि बनने के बाद फिर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में और 16 कारण भावनाएं प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई बेमुनि ही 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर हो सकते हैं,
जिस क्षण में फिसला उसी समय मुझे,
या कि जिनका गर्भ और जन्म तो सामान्य रूप से हो गया बाद में गृहस्थ में रह करके, और जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का संचय किया, सो जैसे ही दीक्षा ली सो दीक्षा कल्याणक मनाया गया, फिर केवल ज्ञान होने पर ज्ञान कल्याणक और निर्वाण पर मोक्ष कल्याणक, ऐसे तीन कल्याणक हुए, वो भी तीर्थंकर।
उसने मुझे बात को सुनाया कि मेरे दिमाग
शावक और मुनि दोनों ही इस तीर्थंकर प्रकृति को संचित कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं,
कि अब मरण निश्चित है।
लेकिन सवाल यह है कि सम्यक दर्शन के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिसमें हो, ऐसी आत्मदृष्टि प्राप्त हो,
जो परिग्रह शरीर पर धारण किए हैं,
प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले सैकड़ों लोग हो सकते हैं, सैकड़ों संस्थाएं हैं जो कि लोक कल्याण के लिए बनी हुई हैं,
ऊपर से जो पत्थर,
लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाए जिसमें कि लोक कल्याण की भावना, आत्मदृष्टि, एक बार अपने आत्म तत्व का श्रद्धान हो जावे तो वो आत्म तत्व प्राणी मात्र के भीतर दिखाई देने लगेगा, और जैसे ही प्राणी मात्र के भीतर आत्म तत्व दिखाई पड़ेगा तो प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना ही उमगेगी, सहानुभूति और उदारता आए बिना नहीं रहेगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि ऐसी आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाए जिससे प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना
पालेंगे हम, कि हाँ हमने अपने,
यहाँ आत्म कल्याण कौन है, प्राणी मात्र के कल्याण की प्रमुखता है,
उसके पीछे भी एक ही मकसद है।
लेकिन ध्यान रखना, ये सबके लिए उत्पन्न ही नहीं हो सकती, बिना सम्यक दर्शन के ऐसी भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। सम्यक दृष्टि को ही प्राणी मात्र के कल्याण की भावना उत्पन्न हो सकती, जिसने आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है वो ही जानता है कि जैसा मेरा आत्म तत्व है वैसा ही प्राणी मात्र के भीतर आत्म तत्व है, और उस आत्म तत्व के विकास की भावना माना, प्राणी मात्र अपने आत्म तत्व को पहचान कर अपना कल्याण कर लेवे, ऐसी भावना तो जिसने आत्म तत्व को जाना है, जिसको आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है उसके ही आ सकती है। इसलिए लिखना पड़ा कि ऐसी आत्मदृष्टि
दोनों को,
जिसमें कि प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति और उदारता जागृत हो जाए, अपने सम्यक दर्शन को हम कसौटी पर कस के देख लें कि प्रशम संवेद अनुकंपा आस्तिक क्या ही हमारे भीतर ये आए हैं या नहीं, हमारे भीतर प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति और उदारता आई है या नहीं, तब हमारी 16 कारण भावनाएं भाना सार्थक होगा। वैसे तो 16 कारण की पूजा, पंच मेरु की पूजा, दशकक्षण की पूजा और भी विभिन्न प्रकार की पूजाएं हम करते हैं, उन पूजाओं के साथ साथ हमारे भीतर ये भावना भी आनी चाहिए, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, लेकिन आत्मदृष्टि पूर्वक कल्याण की भावना के बहने क्या है, उनके भीतर जो आत्म तत्व है वो भी विकास को प्राप्त हो, मेरा आत्म तत्व भी विकास को प्राप्त। द्रव्य और तत्व में अंतर इतना ही है, थोड़ी सी कठिन चर्चा कर लो फिर उदाहरण से सारी चीजें अपन आसान कर लें, थोड़ी सी चर्चा अब तो बहुत दिन हो गए, थोड़ी सी कठिन चर्चा भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि एक मिनट में गायब होता स्वरूप संज्ञान ऐसा है, एक मिनट में पर्दा जो है ऐसे आ जाता है, जो बात कहने की थी वो बात। द्रव्य और तत्व दोनों में फर्क क्या है, सबका अपना अपना द्रव्य इंडिविजुअल है, अपन जितने लोग बैठे हैं वे सब जीव द्रव्य हैं, सबका अपना अपना जीव द्रव्य है, लेकिन जीव तत्व सबके भीतर एक है। हजार लोग बैठे हैं तो कितने जीव द्रव्य हैं, हजार जीव द्रव्य हैं, लेकिन हजार आत्म तत्व नहीं है, आत्म तत्व सबके भीतर वह जो तत्भाव है अर्थात जीव पना है वो सबके भीतर एक ही है, भले ही अपने अपने प्राणों के द्वारा जो जीता है आगे जिएगा, पहले जीता था, जीवती जीवित पूर्वो जीविष्यति इति वा जीवन, ऐसा जीव द्रव्य सबका अलग अलग है, लेकिन कामना से जिसकी आत्मदृष्टि निर्मल हो गई है उसे कहेंगे दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन में तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान, कहे गए सात तत्वों का जैसा स्वरूप है उसका वैसा श्रद्धान, आपा पर का भेद विज्ञान, अपने आत्मा में रुचि और अपने मिथ्यात्व का क्षय उपशम और क्षयोपशम, सम्यक दर्शन में तो इतनी बातें हैं दृष्टि की निर्मलता के लिए, सो वो हासिल हो गई। लेकिन आप इसके बाद उस सम्यक दर्शन में निर्मलता कैसे आएगी? दृष्टि की निर्मलता को सम्यक दर्शन कहते हैं और सम्यक दर्शन की निर्मलता को दर्शन विशुद्धि। अब उस दर्शन विशुद्धि को हम थोड़ा सा समझें कि उस दर्शन विशुद्धि में जो कि सम्यक दर्शन की निर्मलता है, तो सम्यक दर्शन में भी निर्मलता आती है क्या? सम्यक दर्शन तो अपने आप में निर्मल है, तो कहते सम्यक दर्शन में भी निर्मलता आती है कषायों की मंदता से। और कषायों की मंदता आती है आत्मचिंतन और तत्व चिंतन से। इसलिए जो निरंतर तत्व चिंतन में लगा है, जिसने विषय कषाय का विश्राम दे दिया है, उसके लिए ही दर्शन विशुद्धि होगी। अपने घर में रह करके और हम तत्व चिंतन थोड़ी देर कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर पंचेंद्री के विषयों का विचार भी मन में आ जाएगा क्योंकि घर गृहस्थी लगी है। इसलिए कहते कि घर में बैठ के सम्यक दृष्टि को नहीं होगी, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठ करके वर्ष पृथक्त्व, तीन वर्ष से नौ वर्ष के बीच की अवधि में जब वहीं बैठ करके दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाएं भाई जाएंगी, तब प्राप्त होगी, तब सम्यक दर्शन में निर्मलता होगी, क्योंकि कषाय मंद होगी, तत्व चिंतन निरंतर बढ़ता चला जाएगा और फिर धीरे धीरे प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति, अत्यंत उदारता मन में अपने आप आनी शुरू होगी, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति। देखो तो शुद्ध भाव करने की चर्चा जैन आगम में है, शुद्ध और अशुद्ध दो ही भाव होते हैं, सो अशुद्ध भाव छोड़ के शुद्ध भाव करना उससे मोक्ष होगा, लेकिन बीच में अगर कोई प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रूप शुभ भाव करे तो भी उसकी पीठ थपथपाई जा रही, बल्कि उसी की पीठ थपथपाई जाती है, क्योंकि बिना तीर्थंकर के धर्म का प्रवर्तन हो नहीं सकता। शुभानुराग सोचो आप, सम्यक दृष्टि का जो शुभानुराग है वो हमारे लिए कल्याण का कारण बनता है। हमारे सम्यक दर्शन में, हमारे तत्व चिंतन में कौन कारण बना है? तीर्थंकर कारण बनते हैं, वरना हम क्या जानते थे कि क्या आत्म तत्व है और क्या पर तत्व है? आप अपर का भेद विज्ञान, सात तत्व और सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप बताने वाले अगर कोई हैं तो तीर्थंकर हैं। उन्होंने कौन सी भावना भाई? उन्होंने सम्यक दर्शन के साथ शुभ अनुराग रखा, प्राणी मात्र के कल्याण का भाव रखा, जिससे कि आज हमारा कल्याण हो रहा है। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे भीतर अगर प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति आ जाती है तो हमारे गुण बढ़ते हैं, या हमारे गुण बढ़ने लगे। अच्छा, जो व्यक्ति, अपन थोड़ा विचार करें, जो व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति और उदारता रखेगा, क्या उसे किसी से भय हो सकता? बताइए, उसका कोई शत्रु और बैरी हो सकता क्या जिससे उसे डरना पड़े? जिसकी प्राणी मात्र से मैत्री है, प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति है, सबके लिए हृदय में करुणा है, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति कितना निशंक होगा? देखो, एक गुण आ गया निशंकित, काहे से आ गया? निशंकित अंग में भी विशुद्धि आ गई प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति और उदारता से। और जो प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति रखता है, प्राणी मात्र उसके प्रति भी सहानुभूति रखेगा, तो बताओ उसको संसार के किसी विषय भोग की आकांक्षा जागेगी क्या? जिसने सबको अपना मान लिया उसको संसार के भोग विलास की आकांक्षा होगी नहीं, निकांक्षित गुण उसके भीतर अपने आप आने लगा। और जो व्यक्ति सबसे सहानुभूति रखता है, विशेष रूप से धर्मात्माओं से तो बहुत सहानुभूति रखता है, बताओ वो धर्मात्मा के मलिन शरीर को देख करके क्या घृणा करेगा? उसके भीतर निर्विचिकित्सा अंग अपने आप आ गया और जिस व्यक्ति ने एक बार अपनी आत्मदृष्टि प्राप्त कर ली, क्या वो कभी यथार्थ तत्व से विमुख हो पाएगा? उसकी दृष्टि में मूर्ता आ पाएगी, अविवेक आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसलिए उसे अमूढ़ दृष्टित्व नाम का गुण अपने आप प्राप्त हो जाने, एकमात्र प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति रखने से, और जिसकी प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति है वो धर्मात्माओं के दोषों को तो देख ही नहीं सकता, उसे दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। सहानुभूति और उदारता दूसरों के दोषों को देखने के लिए मंजूरी ही नहीं देती। ये गुण हमारे भीतर अगर आ गया, एक गुण आया है तो सारी चीजें आना शुरू हो गई। आत्म तत्व को अगर हमने जान लिया तो सहानुभूति आ गई, और सहानुभूति आ गई तो सारे गुण अपने आप आने लगे। निर्दोष हो गया सम्यक दर्शन। आत्मदृष्टि और सहानुभूति ने मिलकर के हमारे सम्यक दर्शन को निर्दोष बना दिया। ये प्रक्रिया आचार्य भगवंतों ने दर्शन विशुद्धि के लिए दी है। मैं जब विचार कर रहा था तो बहुत अद्भुत लगा, बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या सचमुच हम लोगों के भीतर ऐसी आत्मदृष्टि आ गई। अपने कल्याण की आत्मदृष्टि की चर्चा नहीं है यहां, तो वो आत्मदृष्टि जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण का भाव उत्पन्न हो गया। सबके भीतर जो आत्म तत्व है उसका विकास कैसे हो, मैं कैसे उस मोक्ष मार्ग को सबके लिए बता सकूं जिस मोक्ष मार्ग को मैंने अपना लिया है। ये बात मन में जब आना शुरू होती है तब अपनी गुणवत्ता भी बढ़ती है, अपने अंदर आत्मा में निर्मलता बढ़ती है, और साथ साथ वह तीर्थंकर प्रकृति का संचय होना शुरू होता। अत्यंत पुण्य फला अरहंता, अत्यंत पुण्य का काम है तीर्थंकर प्रकृति। सारी पुण्य प्रकृतियों में सबसे श्रेष्ठ प्रकृति है। और देखें पर भी स्वीकार करना, मैं पर्याय की अपेक्षा नाशवान हूं लेकिन मैं शाश्वत भी हूं, दोनों बातें हैं। ये विचार आना चाहिए। ये विचारों में निर्मलता कब आएगी? जब हमारे अंदर सहिष्णुता, सबके विचारों का सम्मान कर सकें, ये बात अपने विचार में आ जावे तो विचारों की निर्मलता आ गई। अनेकांत धर्म हमारे विचारों में निर्मलता लाता है, हमें सहिष्णु बनाता है। अभी तो हम दूसरे के विचारों से बहुत जल्दी असहमति जाहिर कर देते हैं, अभी तो दूसरे के विचार को हम सर्वथा निषेध ही कर देते हैं, उसे हम देख भी नहीं पाते, विचार भी नहीं करते कि कहीं उसमें भी कोई सच्चाई तो नहीं है। तो हमारे विचारों में इतनी सहिष्णुता आनी चाहिए कि हम दूसरे के विचार को सुन तो सके। मानना नहीं मानना वो तो हम जब कसौटी पे कसेंगे, ठीक होगा तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, लेकिन विचार सुनने में क्या हर्ज है? ऐसी अपने विचारों में सहिष्णुता आनी ही विचारों की निर्मलता है, और वाणी की निर्मलता है साद्वार। जब भी धर्म का प्ररूपण करें तब सापेक्ष ही कथन करें, तब कहलाएगी वो वाणी की निर्मलता। जब अपन दश लक्षण धर्म में वाणी की निर्मलता समझेंगे तब उसके लिए बिल्कुल अलग ढंग से बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने तो ये क्या बता रहे हैं, फिर दश लक्षण में कुछ और बताऊंगा वाणी की निर्मलता के लिए। वहां पर सत्य धर्म की चर्चा चलेगी, वाणी की निर्मलता वो व्यवहार धर्म है। ये जो है अपन चर्चा कर रहे हैं अभी दर्शन विशुद्धि में, जो वाणी की निर्मलता है उसके लिए तो सापेक्ष कथन करना ही वाणी की निर्मलता है। धर्म है वहां पर साद्वाद धर्म, अनेकांत धर्म साद्वाद धर्म, और शरीर की निर्मलता कर्मों की निर्मलता के लिए अहिंसा धर्म। दर्शन विशुद्धि में ये तीनों चीजें समाहित हैं। ऐसी दर्शन विशुद्धि हमारे भीतर आए कि हमारे विचारों में सहिष्णुता आए, हम दूसरे के विचारों से सहमति असहमति तो बाद में जाहिर करें पर उसके विचारों को सुनने के लिए कम से कम अपना मन तैयार रखें, और वाणी हमेशा सापेक्ष कथन बोले, सर्वथा कथन न करें, एकांत कथन न करें, सापेक्ष कथन करें। जब भी बोले तब कौन सी अपेक्षा से बोल रहा हूं ये स्वयं ध्यान रहे तो वाणी हमेशा निर्मल रहेगी। दूसरे की काट छांट के लिए बोलना वाणी की निर्मलता नहीं है। वाणी की निर्मलता तो है वस्तु तत्व का सापेक्ष कथन करना, क्योंकि वाणी हमें इसके लिए नहीं मिली है। वाणी तो हमें मिली है जो उसमें लिखा है कि पशुओं के समान मौन हो जाने का नाम मौन नहीं है, बल्कि आगम के अनुरूप वचन बोलने का नाम मौन है, ऐसा लिखा है। और एक कभी सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह पढ़े आचार्य अजित सागर जी महाराज का है, संग्रह किया इस तरह उसमें मैंने ये पढ़ा था
कि ये क्या
हम लोग सोचते हैं कि हम मौन रह जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तो हो गई वाणी की निर्मलता। इतनी आगम के अनुरूप सापेक्ष कथन करना ही मौन है।
ये कुत्ता जो कि एसी कार में घूम रहा है,
बोलने को मौन कह रहे हैं, बताइए। तो कहते हाँ, सर्वथा वचनों से मौन हो गए, पाप वचनों से मौन हो गए, पर्वधकार कठोर निंद नहीं वचन ऊंचा। आ गया आपके भीतर वह भाव, और प्राणी मात्र के प्रति अगर सहानुभूति होगी तो सापेक्ष कथन ही होगा, और सबके विचारों को सुनने का मन होगा। जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है उसकी कड़ी बात भी सुनने की तैयारी अपना मन करे रहता है, सुन लो अपने ही व्यक्ति है।
लेकिन
प्राणी मात्र को आपने उसके भीतर के आत्म तत्व को जान लिया है कि उस आत्म तत्व में भी मेरे ही जैसी परमात्म तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य विद्यमान है, इसलिए उसके आत्म तत्व का सम्मान करता हूं मैं। अगर ये आपके भीतर सहानुभूति, इस तरह की सहानुभूति, वो वाली छोटी मोटी सहानुभूति की चर्चा नहीं कर रहे कि किसी गरीब आदमी हम देख के अपन ने कही भैया एक भोजन करवा दो, कपड़ा लत्ता दे दो, कछु और कर दो, बस सहानुभूति नहीं, आत्मकल्याण रूपी सहानुभूति। हाँ, ये छोटी मोटी संसार की चीजें मुहैया कर देने का नाम सहानुभूति नहीं, वो तो दुनिया कर रही, उससे कोई तीर्थंकर प्रकृति का संबंध नहीं है। इसके भीतर जो आत्म तत्व प्राणी मात्र के भीतर विद्यमान है, वो कैसे परमात्म तत्व को प्राप्त करे, ऐसी उसके भीतर भावना उत्पन्न हो गई, ये सहानुभूति। और उदार और अहिंसा तो सब समझते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया और करुणा का भाव उत्पन्न हो जावे, हमारे शरीर की कोई भी क्रिया ऐसी ना हो जिससे कि जो दया से रहित। देखो रास्ता चलते समय ये विचार करना कि कांटा न चुभ जाए, पत्थर न लग जावे,
और शायद हमें उसकी सजा,
एक विचार ये है। और दूसरा, किसी जीव का मेरे पैर से घात ना हो जावे, एक विचार ये है।
मिट भी जाएगा।
शरीर की क्रिया हमेशा दया और करुणा पूर्वक हो, भले ही उसके बावजूद भी हमसे जीवों की हिंसा हो सकती है, लेकिन मैंने जो है जीवों की हिंसा का भाव नहीं रखा है, मैंने शरीर की क्रिया की है तो दया और करुणा, और दया और करुणा पूर्वक कोई शरीर की क्रिया करे तो कितनी सी कर पे, जो सोचो
छूटती हुई देह को
बात अल्प रह जाएगी, शरीर की क्रिया अगर दया और करुणा से भर जाए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इस तरह की प्रक्रिया लिखी। एक छोटा सा उदाहरण दिया और आज बात इतनी ही रखूं, क्योंकि समय जल्दी खत्म होता है, पर इतना जरूर है कि हम दर्शन विशुद्धि तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे दुनिया भर के जिसने चश्मा हमने लगा रखे हैं दुनिया को देखने के, वे सब हमारा दृष्टि दोष जब तक दूर नहीं होगा तब तक दर्शन विशुद्धि प्राप्त नहीं होने। दृष्टि दोष जिसका होता है वही लगाता चश्मा, चाहे दूर दृष्टि दोष हो चाहे निकट दृष्टि दोष, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तभी चश्मा लगता है। अपन लगाए हैं बहुत सारे चश्मे, कौन से कम दो चश्मा तो लगाए हैं, एक राग का और एक देश का, हमेशा लगा करके देखते, राग का चश्मा लगा के जो लोगों को देखते क्षण भर में, उसी को देश का चश्मा लगा के देखते। ध्यान रखना दोनों एक साथ चलने वाली चीज है। दूसरे का एक नोट कर लेना कहीं, जहां दूसरे का राग दिखाई पड़े समझना अपना देश है, वहां
से जन्म ले।
क्या समझे, जहां लगे कि इनका इनसे कितना राग है, इसका मतलब ये तय हो गया कि आपका देश है, पता नहीं लगता नहीं तो। और जहां दूसरे का देश दिखाई पड़े, इनको इनसे कितनी चढ़ा है, मतलब आपको इनसे राग है, ये पक्का हो गया उनका देश है कि नहीं, ये बात की बात है। ये चश्मे अपन को उतारना पड़ेंगे तब दर्शन विशुद्धि आएगी। थोड़ी देर अभ्यास करने में क्या दिक्कत है, चश्मा उतार के रख दिया नहीं दिखेगा कुछ और क्या।
इस तरह निरंतर हम
राग द्वेष का चश्मा उतार के रख देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा संसार में, जो वास्तविक है वो दिखेगा। ऐसा अभ्यास भी सुबह शाम करना चाहिए, तब जाकर के अपने भीतर ये दर्शन विशुद्धि और प्राणी मात्र के प्रति जो कल्याण की भावना है वो आएगी। एक छोटा सा उदाहरण दें, जब विवेकानंद अहिंसा धर्म का प्रचार करने विदेश जा रहे थे, तब उनके अपने गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंचे वो, तो गुरु तो थे नहीं लेकिन गुरु की जो जीवन साथी, उनके यहाँ पर गुरु जो है वो गृहस्थ ही होते हैं, इस तरह से तो उनकी जीवन साथी तो शारदा माँ थी। तो वो भोजन बना रही थी रसोई घर में, तो उनसे कहा कि माँ मैं विदेश जाता हूँ, गुरु जी तो पता नहीं, माता तो बता के तो जाते नहीं कब आएंगे, तो मैं तो जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए।
तो बड़े
कुछ नहीं बोलूँ,
80 साल
अपने काम में लगी रही।
पूछो कितने मर गए।
विवेकानंद ने फिर से कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं अहिंसा धर्म के प्रचार के लिए प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से मैं विदेश जाना चाह रहा हूँ, आशीर्वाद दे।
विचार आ जावे तो भी हम अपने
बोली की
नरेन
का उनका नाम समझना, नरेन
को
नरेन एक चाकू बड़ा उठा के तो देख,
मैं हम अज्ञान
मैं विदेश जा रहा हूँ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना लेके, आशीर्वाद मांगने आया था, मेरे से चाकू मंगवा रहे,
कभी जानने की कोशिश कर,
चाकू तो उठा के दे।
हमने सिर्फ
विवेकानंद ने इनोसेंटली बहुत कोई बहुत विचार नहीं किया और वो बहुत भोलेपन में उठाया चाकू और माँ की तरफ बढ़ा दिया और चाकू को हाथ में पकड़ा नहीं और हाथ उठा दिया, जा तेरे द्वारा धर्म की प्रभावना हो, अहिंसा धर्म तेरे द्वारा
प्रभावना।
चाकू मंगाया लिया भी नहीं,
थोड़ा सा
आशीर्वाद दे दिया, जब हम आशीर्वाद मांग रहे थे तब चाकू मंगाया, कुछ समझ में नहीं आया माँ,
सब कुछ आसार है।
अब जाने से पहले मुझे समझा था,
आत्मा ही
बोले मैं जानना चाहती थी कि तू सिर्फ वचनों से ही प्राणी मात्र के कल्याण की बात कर रहा है या तेरे दिल में भी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है। मुझे परीक्षा में मालूम पड़ गया कि तेरे भीतर प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, क्योंकि तेने चाकू का फलक अपनी तरफ रखा है और उसका दस्ताना मेरी तरफ बढ़ाया है। अगर तू फलक मेरी तरफ बढ़ाता तो मैं समझ जाता। इतनी सी बात चाकू किस तरह से देना है, इससे मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे भीतर प्राणी मात्र के प्रति कितनी दया करुणा सहानुभूति और उदारता है, तभी जाकर के और उस अहिंसा धर्म का पालन हो सकेगा। इसी भावना के साथ कि अपने जीवन में भी ये सब बातें देर सवेर जब भी आवे अपन भावना जाए कि ऐसा आत्म तत्व का बोध अपन को भी हो। बोले आचार्य विद्या विद्या सागर में गुरु मेरे शाश्वत दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की न स्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। शिव के निशकंठ
श्री विद्यासागर जी महाराज के संगत मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज श्री भव्य सागर जी महाराज के चरण कमलों की पूजा अनर्क को प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति।
सिर्फ इतना ही है कि मैं ठीक से मरण करके जीवन से पार हो जाऊं, मेरा वो जीवन श्रेष्ठ है जिसमें कि मैं इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर, इसकी ग्रिप से बाहर हो जाऊं। बॉडी की ग्रिप हमारे ऊपर बात है, उसकी ग्रिप से बाहर हो जाऊं। ये यदि हम पुरुषार्थ करते हैं, बहुत लोग डूबे होंगे इस संसार में, बहुत लोग हमारे सामने मरण को प्राप्त होते हैं और अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं, पूरे जीवन भर भी नहीं संभल करके जीते हैं और आखिरी समय भी नहीं संभल पाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे। इस सब के बावजूद भी कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, आज में ऐसे हारने वाली भाषा का उपयोग नहीं करना, आज भी यदि हम चाहें तो शांतिपूर्वक और समतापूर्वक अपनी देह को छोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी, जो हमने कल भी इस पर विचार किया था, कि देह के प्रति हमारी आसक्ति, कषायों की मंदता, ये दो चीजें बहुत आवश्यक। जो जीवन भर सबके साथ प्रेम पूर्वक जिया होगा, जो ऊंचा भी नहीं बोला होगा, जिसने हमेशा बारह भावनाओं का चिंतन किया होगा, जिसके परिणाम हमेशा भीगे रहे होंगे दूसरे के कष्ट से, जिसे अपने भीतर भी कष्ट मालूम पड़ा होगा, इस तरह का जीवन अगर जिया होगा तो आखिरी समय बहुत शांति से, बहुत समतापूर्वक और भावना गुरु मूले यतिनिचिते चैत सिद्धांत वारदि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्नसन समन्वितम मरणम, मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं है, जितनी बार मरना पड़े मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं मरण के समय, या तो जिनको मैंने गुरु माना है उनके चरणों में मेरा मरण हो तो मुझे मरने से कोई डर नहीं। गुरु मूले यतिनिचिते, या फिर जो है मुनि जन जहां पर हो यदि नहीं मिले, चैत सिद्धांत वारदी सद घोषे, तब फिर ऐसी जगह मेरा मरण हो कि सुबह से मंदिर की घंटियां बज रही हैं और मेरे कानों में पूजा की ध्वनि, या कि पास में कोई बैठा है और जो नमो अरहंतानम मुझे सुना रहा है उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, तो मुझे मरने में कोई डर की, मैं शांतिपूर्वक मरण को प्राप्त। ये ऐसा मुझे कई बार भी मरना पड़े, ऐसा कई बार मरने नहीं पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं कि जितनी भी बार मेरा मरण हो, या तो अपने गुरुओं के चरणों में हो, या मुनि जनों के चरणों में हो, और या फिर जो है चैत्यालय की और सिद्धांत अर्थात जिनवाणी की ध्वनि मेरे कानों में पड़ती रहे और मैं इस देह को छोड़ सकूं। ऐसे कई उदाहरण हैं सामने सामने ही, शिखर जी की टोंक पर पहुंचने पर और गणधर भगवान की टोंक पर जाकर माथा टेका और हमारे देखते देखते माथा उठाई नहीं, प्राण निकल गए, चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यों की त्यों। बरेली में माइक पकड़े हुए हैं, शाकाहार के बारे में दो शब्द बोलने के लिए खड़े हैं प्रवचन से पहले, और महाराज मेरा जीवन पता नहीं कितना शेष है, पर ये काम मैंने लिया है उसे पूरा कर सकूं, आप आशीर्वाद दें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, माइक दूसरे के हाथ में, वो धीरे से बैठे तो बैठते ही चले गए और पूरा हो गया जीवन, चेहरे पर ज्यों की त्यों मुस्कुराहट। ऐसा भी हो सकता है, ये हमारे सामने सामने। वास्तव में तो अगर ऐसा मरण अपन को मिले तो ऐसे मरण की कामना करनी, मरना तो है ही, संकलेश पूर्वक ना हो। जो अपन कहते ना, बूढ़े पुराने लोग कहते, भैया हमें तो सेवा नहीं करवाऊंगे पड़े कोई की, अपनों काम अपने हाथ से करते रहे पूरे जीवन भर और आखिरी समय बैठे बैठे जो है, और ऐसी निद्रा, चिर निद्रा, जो कि सुबह नींद नहीं खुलती, एक निद्रा वो है जिसमें सुबह नींद खुल जाती है, एक निद्रा वो है चिर निद्रा, इसके बाद फिर हमारी निद्रा कोई भंग नहीं कर सकती। ऐसे मरण की यदि हम चाहें तो कामना कर सकते, इसमें कोई हर्जा नहीं, लेकिन इसके बाद भी ऐसा मरण बहुत पुण्य के उदय से होता है, इसके लिए पुराना पुण्य भी चाहिए और जीवन भर जो पुरुषार्थ किया वो भी चाहिए। हमें ऐसे मरण के लिए लालायित तो होना चाहिए, पर अभ्यास किस चीज का करना चाहिए, हमेशा अपने जीवन में व्रत नियम के साथ जीवन जीना चाहिए। व्रत नियम का महत्व वहां जाकर के समझ में आता है, जिसने जीवन भर व्रत नियम लिए होंगे, जरूरी नहीं है कि व्रत नियम लेने वाला भी शांतिपूर्वक मरण को प्राप्त हो सके, ये भी ध्यान रखना। हाँ, अगर व्रत नियम का ठीक ठीक अभ्यास किया होगा, मजबूरी में लिए होंगे और अंतरंग में उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, दृष्टि की निर्मलता नहीं होगी, और अकेले व्रत नियम लिए होंगे तब भी वे कार्यकारी नहीं है, दृष्टि की निर्मलता के साथ अगर आपने अपना जीवन संयमित बिताया होगा तब फिर
दो ही मरण होंगे, या तो बाल पंडित मरण, और अगर आखिरी में भी अगर चाहें तो हम महाव्रतों को धारण कर सकते। एक दिन के लिए भी जिसने मुनि बनकर के चर्या की है और फिर मरण को प्राप्त हुआ है, उसे भी पंडित मरण की फैसिलिटी है। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि एक दिन तो कम से कम जीवन में मैं मरण से पहले मुनि बनकर के उसका स्वाद ले लूं कि वो क्या स्थिति होती होगी जिसमें कि सारी दुनिया से डिटैच होकर के और अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर हो सके। ऐसे उदाहरण भी हैं। एक वैराग सागर का उदाहरण है, जिन्होंने कि महाराज की उम्र के थे, बदामी लाल उनका नाम था। आज छोटे छोटे उदाहरण सुना रहा हूँ और फिर उसके बाद अपन ये समझें कि मैक्सिमम संलेखना कितने समय की ली जाती है और मिनिमम कितने समय की ली जाती है, एक संलेखना लेने वाले को कितने लोगों की सेवा आवश्यक होती है और कितने लोग उसकी सेवा कर सकते हैं। उदाहरण सब प्रकार के मेरे देखे हुए हैं, इसलिए आपको बहुत आसानी से बता देता हूँ कि किस किस तरह से संलेखना, जैसी विधि लिखी है उसमें से अधिकांश अपने जीवन में वो अवसर तो नहीं मिल पाया मुझे देखने का, लेकिन सुनने का और पूरा अवसर मिल गया कि आज भी 48 मुनि महाराज एक की संलेखना कराने के लिए उपस्थित रह सकते हैं आचार्य महाराज के सामने के सानिध्य में नेमावर में पिछले 99 में।